सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी। वातावरण में एक सुकून भरी शांति थी, लेकिन रैना के चेहरे पर थकावट और बेचैनी साफ छलक रही थी। वो अपने पिता राजेश जी के बिस्तर के पास बैठी थी, हाथ में दवाइयों की पट्टी और एक गिलास पानी थामे। उनके लिए ये रोज का काम था, लेकिन आज उसके भीतर कहीं गहरी बेचैनी थी। पापा, ये दवा खाली पेट लेनी है, आप जानते हैं ना, उसने धीरे से कहा और उनके हाथ में गोली थमा दी। राजेश जी ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर चेहरे की झुर्रियों और आंखों की थकान ने उनकी हालत बयां कर दी। उन्होंने पानी पिया और कुछ देर चुपचाप बेटी को देखते रहे। बेटा, उन्होंने अचानक आवाज में नरमी घोलते हुए कहा, तू कब तक इस घर में यूं झुककर जीती रहेगी? मैं जानता हूं, तेरी सौतेली माँ और उसकी बेटी तेरे लिए नर्क बना देती हैं। रैना ने झट से उनकी बात काटी। पापा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत जल्दी कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। जैसे ही नौकरी मिली, हम यहां से निकल जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको और तकलीफ सहनी पड़े। राजेश जी ने गहरी सांस ली, मानो भीतर दबा गुस्सा और पीड़ा बाहर आना चाहता हो। रैना, मैंने हमेशा चाहा था कि तू इस घर में चैन से जी सके, पर कमीनी और मोनी कभी तेरे लिए परिवार नहीं बन पाए। कमीनी माँ का नाम भी बदनाम कर दिया है, उसने तुझे अपनी बेटी मानने की कभी कोशिश ही नहीं की। और मोनी, उनकी आवाज़ में दर्द और निराशा उतर आई, वो भी तुझे कभी अपनी बहन नहीं मान पाई, हमेशा तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। मैं समझता हूँ बेटा, तू अकेली कितनी लड़ाइयाँ लड़ रही है। रैना की आंखें भर आईं, वो उनके पास झुक गईं और हाथ पकड़कर बोली, पापा आप चिंता मत करो, मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है कौन अपना है और कौन पराया। बस आप मेरे साथ रहिए, यही काफ़ी है, आप ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। राजेश जी ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, हम दोनों ही तो एक दूसरे का सहारा है, बस मुझे तुझ पर गर्व है, तू जितनी हिम्मत से इन सब का सामना करती है वो तेरी असली जीत है। रैना ने हल्की मुस्कान दी, मगर दिल में गहरी कसम खा चुकी थी कि जल्द से जल्द नौकरी पाएगी और इस बंगलो जैसे घर जो उसके लिए पिंजरा बन चुका था से बाहर निकल जाएगी। उसी समय कमरे के बाहर से धीमी धीमी सरसराहट सुनाई दी, शायद कोई दरवाजे के पास खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। रैना को एहसास हुआ, पर उसने अनदेखा कर दिया। कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर आई तो देखा कामिनी यानी उसकी सौतेली माँ सीढ़ियों के पास खड़ी थी, चेहरे पर बनावटी मुस्कान और आंखों में वही पुरानी जलन। अरे वाह रैना, बड़ी सेवा कर रही हो अपने पिताजी की, कामिनी ने ताना मारा। काश तुम उतनी ही सेवा इस घर की भी कर पाती, दिन भर बस नाटक करना आता है तुम्हें। रैना ने उसकी ओर देखा, लेकिन जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उसके कदम सीधे किचन की ओर बढ़ गए। कामिनी को ये चुप्पी और खल गई। तुम्हारी ये मासूमियत और चुप्पी विक्रम को बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ, लेकिन याद रखो, इस घर में राज मोनी का चलेगा, तुम्हारा नहीं। रैना बिना कुछ कहे किचन में घुस गई, लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में आंधी चल रही थी। किचन में जाकर उसने पिताजी के लिए हल्का नाश्ता बनाने की तैयारी शुरू की। बर्तन खनकते रहे और उसकी सोचें बिखरती रहीं। क्या मैं सचमुच यहाँ पर बोझ हूँ? अगर नौकरी ना मिली तो क्या पापा और मुझे हमेशा यही सब सहना पड़ेगा? उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता भी झलक रही थी। उधर हॉल में मोनी और कामिनी आराम से बैठी चाय पी रही थीं। मोनी बोली, माँ आप देखना, ये रहना ज्यादा दिन यहाँ टिकने वाली नहीं, इसकी हालत देखकर लगता है कि कहीं भी जाकर नौकरी कर लेगी, बस भाग निकलेगी इस घर से। कामिनी ने हंसी दबाते हुए कहा, और यही तो मैं चाहती हूँ, ये लड़की चली जाए ताकि सिर्फ तू और मैं रह जाएं इस घर में, और विक्रम वो तो वैसे भी हमारी बातों में रहता है, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। दोनों के चेहरे पर चालाकी और संतोष की झलक थी। नाश्ता बनाकर जब रैना दोबारा पापा के कमरे में गई तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा तू सच में मेरी सबसे बड़ी ताकत है, एक दिन आएगा जब तुझे तेरी मेहनत का फल मिलेगा, तो इन सब लोगों से कहीं ज्यादा बड़ी और सच्ची इंसान है। रैना ने धीरे से जवाब दिया, बस पापा मुझे आपकी दुआ चाहिए, बाकी सब मैं कर लूंगी। उनके शब्दों ने उसे भीतर से और मजबूत कर दिया। रात की कड़वी बातें, दिन का ताना, सौतेली माँ की चालें, सबका जवाब वो अपनी मेहनत और हिम्मत से देना चाहती थी। उसने तय कर लिया था कि अब हर दिन एक नई कोशिश होगी नौकरी पाने की, और जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक वो टूटेगी नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने पिताजी की जिंदगी भी संवारनी थी। कमरे की खिड़की से आती हल्की हवा ने उसके चेहरे को छुआ। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाई, भगवान बस इतना कर दो कि मुझे एक मौका मिल जाए, एक नई शुरुआत का, ताकि मैं पापा को इस दर्द से निकाल सकूं। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू ढलक गई, लेकिन उस बूंद में दृढ़ निश्चय की चमक भी थी। और यहीं इस नए संकल्प के साथ उसकी सुबह की कहानी खत्म हुई, मगर उसकी असली जंग अब शुरू होने वाली थी। प्यारे पाठकों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट। दोस्तों, सबसे पहले दिल से शुक्रिया कि आपने मेरी ये नॉवेल पढ़ी और इसे इतना प्यार दिया। आपकी मोहब्बत ही मुझे आगे लिखने की हिम्मत देती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरी दूसरी नॉवेल ये इश्क बड़ा बेदर्दी है भी उतनी ही पसंद आएगी। ये नॉवेल ऐशा और अर्जुन की दास्तान है, जहां एक तरफ ऐशा की मासूमियत और नरमी है, वहीं दूसरी तरफ अर्जुन का खतरनाक और रहस्यमयी किरदार। तकदीर इन दोनों को एक ऐसे रिश्ते में बांध देती है जिसमें मजबूरी, जुनून और दर्द की गहराई है। क्या नाजुक सी ऐशा अर्जुन जैसे इंसान के साथ अपना रिश्ता निभा पाएगी, और क्या अर्जुन के अंधेरे में कभी मोहब्बत की रोशनी जगह बना पाएगी? यही सवाल इस कहानी को और रोमांचक बना देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये इश्क बड़ा बेदर्दी नहीं पढ़ी तो जरूर एक बार पढ़िए। मुझे भरोसा है ये सफर भी आपको उतना ही बांधेगा जितना मेरी बाकी कहानियां बांधती आई हैं।